धवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 15
ओम नमः सीते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सौवसाऊणं अन्ताय मज्जहीनं दशदशयचावधीरं पडमजिनं वोच्छं न मिऊणन्तरं अनन्तरुत्तुङ्गसन्नमै दुर्गेजम्।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड है जो जीव स्थान नामक, उसमें अपना प्रकरण है अंतरानुगम का। और पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 158 पर हम आ गए हैं। यह सम्यक तो मार्गणा की बात चल रही है और क्षायिक समय दृष्टियों में हमने देखा था चौथे का अंतर, नाना जीव की अपेक्षा तो चौथा पांचवा छठा सातवां का अंतर ही नहीं है। एक जीव की अपेक्षा हम अंतर देखते हैं तो जघन्य अंतर चौथे वाले का पांचवे में जाकर वापस आया तो अंतर मूर्त होता है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि, क्योंकि क्षायिक करने के बाद जब
संयम प्राप्त,
संयम प्राप्त करेगा तब उसका अंतर चालू हो जाएगा और फिर मर के देव में चला जाएगा। फिर पांचवे छठे सातवें का अंतर उसकी बात हो रही थी तो उसका उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरों को हम देखा था हमने, पांचवे का पहले हमने देखा था। फिर अभी छठे की बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पेज 158 नीचे का पैराग्राफ। क्षायिक सम्यक दृष्टि प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि प्रमत्त संयत जीव, अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय, वो ल हुआ है ऊ करना उसका, उपशांत कषाय पुनः सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण, वो बराबर करना अनिकृति कोण कण हुआ है, अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण अप्रमत्त संयत होकर। आपके उसमें करेक्शन है क्या, ऐसा ही गलत है? गलत ही है, इन्हें पुरानी कॉपी है। गुणस्थान और आयु के काल क्षय से मरण को प्राप्त हो, एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, यानी छठे वाला अंत में जब सातवें में जाकर ऊपर चला गया, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा और सातवें में मरकर देव हुआ, यानी वो अंतर में उसका उपशम श्रेणी का काल भी वो अंतर में डाल दिया। एक समय कम वाला लिया वो, क्योंकि संयम को उसको देरी से संयम प्राप्त कराना, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां जीवन के अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाने पर प्रमत्त संयत हुआ, यानी डायरेक्ट प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त में से प्रमत्त होगा वो सब ले लेना उसके अंदर, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया, पश्चात अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त और मिलाए। अभी वो हजारों बार हुआ वो सब उसमें गौण करके केवल एक बार ही बताया है, अकेला छठे में आया और सातवें में एक बार ही रहकर होता है, ऐसा कभी नहीं होता। फिर उसको मिलकर एक अंतर्मूर्त गिना उसका। अंतर के बाहरी अंतर 8 अंतर्मूर्त है और अंतर के भीतरी 9 अंतर्मूर्त है। भीतरी ने जो अंतर के अंदर हमने काउंट किए थे जो शुरुआत में दिया था
9 महीना 60
पर पहले भाव में, ऊपर जो नौ बताए थे ना अंतर्मुख, वो अंतर के अंदर वाले हैं, और अंतर समाप्त होने के पश्चात कितने अंतर्मुख गिने हमने, तो आठ गिने,
तो नौ महीना था।
इससे नौ में से आठ के घटा देने पर शेष बचे हुए एक अंतर्मुख से अधिक पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोपम शायिक सम्य दृष्टि प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। हमने ये पहले भी ये बात देखी थी कि उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी का जो अंतर्मुहूर्त है वो तो उसका काल जो है जुदा जुदा है, यहाँ के दो बार सात वक्त, वहाँ का एक बार सात, ऐसा दिया था। अथवा अंतर के आभ्यंतरी दो अप्रमत्त काल, यानी जो पूर्व भव का जो पूर्व पहला पूर्व कोटि था ना, उसमें उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा था तो दो बार सात में हुआ था, पहले नौ अंतर्मुहूर्त गिने उसमें से दो बार सात सातवा गुणस्थान था, उसके बराबर यहाँ का एक बार का सातवा गुणस्थान है। पेज नंबर 159 छठे का अंतर देख रहे थे, तो जैसे पहले भी हमने वो काउंट किए थे ना, पेज नंबर बताती हूँ आपको, ये हमने ये बात देखी थी ना, दो गुना है अगर 120 पर भी था, 159 पर भी, अभी तभी हमने पढ़ा था उसको, 120 पेज पर आई थी बात। हमने फिगर निकाल के देखी थी ना, यानी उपशम श्रेणी के दो सात गुणस्थान के बराबर क्षपक का एक सातवा गुणस्थान, ये देखा था ना, याद आए ना, वही बात यहाँ बता रहे। फिर देखो, पढ़ेंगे तो याद आएगा आपको, फिर से पढ़ती हूँ 159 शुरू से, 159 शुरू से। अथवा अंतर के आभ्यंतरी दो अप्रमत्त काल और उनके बाहरी एक प्रमत्त काल शुद्ध है। अभी 159 पर देखो, वो तो हमने 121 पेज पर देखा था। अतएव घटाने पर शून्य शेष रहा, क्योंकि अप्रमत्त संयत के काल से प्रमत्त संयत का काल दूना होता है। तथा अंतर के भीतरी छह उपशामक काल है और उनके बाहरी तीन क्षपक काल शुद्ध है। अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा, क्योंकि उपशम श्रेणी के काल से क्षपक श्रेणी का काल दुगुना होता है। देखो अभी हमने क्या देखा था, पेज नंबर 158 पर देखो, पहले नीचे का पैराग्राफ है, पहले जो नौ अंतर्मुहूर्त देखे, नौ अंतर्मुहूर्त में अप्रमत्त दो बार आ गए हैं, एक नंबर पर आ गया और यहाँ पर भी आ गया, तो दो बार के अप्रमत्त के बराबर वो अंतर के अंदर है। उसके बराबर छठे का एक निकाला उन्होंने, शुद्ध प्रमत्त संयत निकाला, पहले जब उन्होंने किया तो यहाँ के दो सात गुणस्थान, वहां का एक सात गुणस्थान ऐसा लिया था, यहाँ तो अलग पद्धति से बता रहे। छह उपशमक काल जो है वो तो समान, इनके तीन क्षपक काल के समान है, वो उसके साथ डिलीट हो गया।
यहाँ पे जो नौ अंतर्मुख लिए वो दो उस पे दो बार अप्रबत से आ गया तो उसके समाज छठे का काल हो गया। यहाँ पे ये जो नौ अंतर्मुख बता है वहाँ पे अप्रमत दो बार हुआ।
हाँ वो दो अप्रमत जो बताए देखो प्रमत्त का अंतर कब चालू हो गया जब अप्रमत्त में पहुंचा
तब
वहाँ के दो अप्रमत्त लिए क्योंकि अप्रमत्त में मरा था और वहाँ के दो अप्रमत्त के बराबर देखो यहाँ पर अंतर लब्ध हो गया बात बचे ना प्रमत्त संयत हुआ इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया यानी वो वहाँ प्रमत्त का एक अंतर्मूर्त अप्रमत्त का एक अंतर्मूर्त इस तरह से वहाँ लिया बाद वाले और फिर छह अंतर्मूर्त लिया। तो यहाँ के जो छह क्ष उपशामक थे उसके बराबर वहाँ के तीन क्षपक हुए उसको कैंसिल कर दिया उन्होंने। वहाँ जब गिने थे हमने 121 पेज पर देखो निकालो उन्होंने वहां के दो अप्रमत्त के बराबर यहाँ का एक अप्रमत्त निकाला था श्रेणी संबंधी हाँ क्षपक का एक
बराबर
मैंने क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयुक्त का काल निकाला था उसके बदले यहाँ उन्होंने प्रमत्त लिया है शुद्ध प्रमत्त लिया यहाँ अलग बात बताई उन्हें पर वहाँ दो अप्रमत्त के साथ एक प्रमत्त अप्रमत्त का ही निकाला था
हाँ।
यहाँ वो प्रमत्त कह रहे हैं पढ़ रहे अभी चौथे काल चौथी लाइन की लास्ट में अंतर के भीतरी उपशामक कालों में से एक एक शपक काल के आधा घटाने पर शपक काल का आधा शेष रहता है शपक काल यानी बारवा गुणस्थान इस प्रकार सब मिलाकर 3.5 अंतर्मूर्त अवशेष रहे ये जो वही बात हमने 121 पेज पर देखी थी वही यहाँ पर रिपीट की उन्होंने वो 3.5 अंतर्मूर्त हमने दिखे थे इस प्रकार सब मिलाकर ये हो गया उन 3.5 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोपम काल शायिक समय दृष्टि प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब अप्रमत्ता का देखेंगे वहां हमारी मार्गणा मतिशुद्ध ज्ञान वाली थी यानी समय दृष्टि थे ना यहाँ पर वही बात लागू होगी। अब क्षायिक समय दृष्टि अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं
यहाँ पे मतिश्रोत में हमने जो 122 पेज पे दो अंतर्मूर्त बाकी रहते हैं और यहाँ पे 3.5 अंतर्मूर्त बताया वो डिफरेंस किस है
अरे वो अप्रमत्त का है अभी हम प्रमत्त का हमने सोचा है अभी अप्रमत्त का पढ़ना है आप आगे के पेज पर चले गए 122 में अप्रमत्त की बात है उसके साथ इसको मैं कंपेयर करो 121 पर जो हमने बताया वहाँ का लेना देखो शायिक समय दृष्टि अप्रमत्त संयुक्त का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक अप्रमत्त संयुक्त शायिक समय दृष्टि जीव अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय होकर पुनरपि सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण होकर मरण को प्राप्त हुआ। क्योंकि सातवें का अंतर देखना है ना, सातवें के बाद आठ नौ दस ग्यारह दस नौ आठ इतने अंतर्मुख पहले गिन पूर्व के बहु में। और एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और संसार के अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्त संयत हुआ। अप्रमत्त संयत होते ही अंतर समाप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पश्चात प्रमत्त संयत पुनः अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के छह अंतर्मूर्त और मिलाए तो अंतर के आभ्यंतरी छह उपशामक काल है और बाहरी तीन क्षपक काल है, अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा। यानी उपशामक काल और क्षपक काल वो तो निकाल दिए, यानी
सेम हो गया
आठ नौ दस उतर से दस नौ आठ उसके बराबर क्षपक के आठ नौ दस कैंसिल कर दिए। अंतर के भीतरी उपशांत काल में से क्षपक काल का आधा घटाने पर आधा काल शेष रहा, यानी बारहवें का आधा काल शेष रहा। अवशिष्ट साढ़े पांच अंतर्मूर्त रहे क्योंकि वो यहाँ पर लेने ना पहले छठे यानी सातवां प्राप्त हुआ था, फिर सातवां फिर छठा फिर सातवां फिर तेरवां और चौदवां और बारहवें का आधा, तो ये साढ़े पांच अंतर्मूर्त होते हैं। उनसे कम पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोपम काल क्षायिक समय दृष्टि अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये सेम है जैसे 122 पेज पर देखा था।
ये क्षायिक समय दृष्टि जीव है तो उसको 33 सागर एक सब उसमें एक समय कम वाली आयु में क्यों भेजते हैं?
इसलिए भेजा आपने ही थे दो तीन दिन में।
हाँ,
देखो 33 सागर वाला जो आता है तो वो जल्दी संयम धारण करता है और माइनस एक समय वाला है वो नहीं कर सकता। ये बात नहीं, वो तो अंत के अंतर्मूर्त पहले संयम धारण करके मोह जा सकता है, इसलिए वो एक समय कम वाला लिया। क्षायिक ऊपर चदुन्नम उवसामगानम अंतरम केवचिरम कालादोहोदि नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। क्षायिक समय दृष्टि चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर होता है, जैसे अन्यत्र हमने देखा वैसा ही यहाँ पर है। यह सूत्र सुगम है। उपकस्येन वासपुदत्तम, उक्त जीवों में उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व है। यह सूत्र भी सुगम है। जो उपशम श्रेणी का अंतर है वही इनके साथ शायिक के साथ है। एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न अंतो मुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। इस सूत्र का भी अर्थ ज्ञात है। जैसे आठवें के लिए श्रेणी चढ़ के उतारना फिर आठवें में आया तो अंतर हुआ। उपकस्येन तेत्तीसम सागरोपमानि सादिरेयानि, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। जैसे एक जीव पूर्वकोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, आठ वर्ष व अंतर्मूर्त के बाद अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त संयत संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके उसी काल में क्षायिक सम्यक्तों को भी प्रस्थापन कर उसके साथ साथ उसने क्षायिक सम्यक्त भी प्राप्त किया, यानी वो संयम धारण करके क्षायिक हुआ। उपशम श्रेणी के योग्य विशुद्धि से विशुद्ध हो, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय हो, पुनः सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण हुआ और अंतर को प्राप्त हो गया। यहाँ क्या करना है, उपशामकों का अंतर देखना है, आठवें गुणस्थान का अंतर। तो कैसे किया, कोई जीव समय के साथ मान लेते जन्म लिया, 8 वर्ष के बाद उसने संयम धारण किया, संयम धारण के बाद उसने सपना की, फिर उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा और 8वें के बाद यानी 8वें में आकर वापस 8वें में आकर मर गया। अपूर्वकरण में पहुंचते ही अंतर को प्राप्त हो गया, पुनः पूर्व कोटि तक संयम को पालन परिपालन कर 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। यह अपूर्वकरण का भी पूरा अंतर मुहूर्त ले लिया, बाद में वो अंतर कर दिया उसे। वहां से च्युत हो ये 33 सागरोपम हो गया, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जीवन के अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाने पर अपूर्वकरण हुआ। अभी पूरा 33 सागर लिया, संयम धारण करने के लिए तो कोई रुकावट नहीं थी, यथा योग्य समय में संयम धारण किया, श्रेणी तो लास्ट में चढ़े ऐसा लेना, इसलिए पूरा 33 सागर लिया, यहाँ एक समय कम नहीं किया। अपूर्वकरण हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, फिर पूरी श्रेणी चढ़ के उतरेगा और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। पुनः अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय, पुनः सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण हुआ। पश्चात ऊपर के अप्रमत्तादि गुणस्थान संबंधी 9 अंतर्मूर्तों से सिद्धि को प्राप्त हुआ, यानी फिर अप्रमत्त होकर प्रमत्त अप्रमत्त कर दिए, फिर क्षपक श्रेणी के प्रायोग विशुद्ध हुआ वो सब, फिर क्षपक श्रेणी चढ़ी, उसके अंतर्मूर्त भी ले लेना उसके साथ। इस प्रकार 8 वर्षों से और 27 अंतर्मूर्तों से कम, 2 पूर्व कोटियों से साधिक, 33 सागरोपम काल, शायिक समय दृष्टि अपूर्वकरण संयत का उत्कृष्ट अंतर है। यह अपनी बात अंतर की चल रही है, शायिक समय दृष्टि कोई जीव है और उपशामक 8वें गुणस्थान के अंतर की बात हम देख रहे थे। तो 2 पूर्व कोटि 2 बाजू लीना, बीच में 33 सागर की बात। तो पहले वाले पूर्व कोटि में 8 वर्ष के बाद एक अंतर मुहूर्त में उसने संयम धारण किया, संयमी होकर क्षायिक समय तो प्राप्त किया और क्षायिक समय तो प्राप्त करके उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, 8वां छोड़ा और मर गए देव हुआ, यानी उसके सारे अंतर्मूर्त गिनना। फिर देव में 33 सागर रहा, वहां पूर्व कोटि में आया, यथा योग्य संयम धारण कर अंत तक घूमा। और फिर रूपसम श्रेणी को प्राप्त होते ही अंतर समाप्त हुआ। चल में एक बार बाद में उसने पूरी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ा, इसलिए अंतर हो गया था। इसी प्रकार पहले बताया ना, नीचे से 5वीं लाइन फिर पढ़ो, 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन। इस प्रकार 8 वर्षों से और 27 अंतर्मूर्तों से कम, 2 पूर्व कोटियों से साधिक, 33 सागरोपम काल, शायिक समय दृष्टि अपूर्वकरण संयत का उत्कृष्ट अंतर है। अब 9वें का भी इसी प्रकार घटित करेंगे। इसी प्रकार शेष 3 उपशामकों का भी अंतर जानना चाहिए। विशेषता यह है, अनिवृत्तिकरण उपशामक के 25 अंतर्मूर्त, क्योंकि 9वां पहले भव में 9वां छोड़ा तब से अंतर चालू हो गया, और सूक्ष्म सांप्राय उपशामक के 23 अंतर्मूल और उपशांत कषाय के 21 अंतर्मूल कम करना चाहिए। चदुन्नम खवा अजोगी केवली ओघम, क्षायिक सम्य दृष्टि चारों क्षपक और अयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि ओघ में वो क्षायिक होते तभी तो क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं ना। तो क्या अंतर देखा था नाना जी उनकी अपेक्षा,
एक समय से
6 महीने और एक जीव की अपेक्षा
एक समय नहीं, एक अंतर्मूल और वर्ष पृथक नहीं, सॉरी एक जीव की अपेक्षा साइक समय
क्षपक श्रेणी चढ़ना है,
नहीं अंतर ही नहीं होगा,
अंतर नहीं होगा बरोबर। तो सहयोगी केवली ओगम, क्षायिक सम्य दृष्टि सहयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, यानी नाना जीवन की अपेक्षा कितना अंतर होगा, बोलो
6 महीने एक समय के नहीं, सहयोग केवल अंतर नहीं है, सहयोग केवली का अंतर है, अयोग केवली का अंतर है,
सहयोग केवल नाना जीवन की अपेक्षा भी अंतर नहीं, हमेशा उसमें जीव पाए जाएंगे। हमने क्या देखा, सर्वज्ञ भगवान जो अनंत भगवान है उनका कभी अभाव नहीं होता है। तो क्षायिक समय निश्चित सहयोगी केवल का अंतर हो, ये रोज तो पढ़ रहे हम ये दोनों ही सूत्र सुगम है। अब वेदक समय दृष्टियों की बात चलेगी, वेदक समय दृष्टियों के गुणस्थान बोलो 4 से 7 4, 5, 6, 7 वेदक सम्मादिट्ठिसु असंजत सम्मादिट्ठिनम सम्मादिट्ठि भंगो, कहते वेदक समय दृष्टियों में असंयत समय दृष्टियों का अंतर सम्यक दृष्टि सामान्य के समान है। कितना होगा नाना जीवन की अपेक्षा, कितना अंतर होगा बोलो, अंतर नहीं है क्योंकि चौथा पांचवा छठा सातवां गुणस्थान हमेशा होगा। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर देखना है, बोलो
कुछ कम कोटि पर,
हाँ कुछ कम कोटि पर, क्योंकि चौथे वाले का अंतर कब होगा, उसके ऊपर के गुणस्थानों नीचे तो भेज नहीं सकते क्योंकि हमारी मार्गणा तो वेदक सम्यक की है। ओग में तो हमने उसको नीचे भेजा था, अर्धपुद्गल परावर्तन तक घुमाया था, उसकी बात नहीं करनी, यहाँ वेदक समय दृष्टि रखना है। तो ऊपर के गुणस्थान में जाएंगे बहु पलट जाएगा तो देव में जाकर उसका चौथा हो जाएगा फिर वापस, इसलिए कुछ कम पूर्व कोटि होता है और कम से कम अंतर अंतर मूर्त होगा। जिस प्रकार से सम्यक मार्गणा के ओघ में असंयत समय दृष्टियों का अंतर कहा है उसी प्रकार से यहां भी कहना चाहिए। यहां कुछ कम पूर्व कोटि किसमें घटित करेंगे,
वेदक समय दृष्टि में,
कितना कम करेंगे पूर्व कोटि में से
असंयत समय दृष्टि में,
हाँ बोलो मनीषा बेन आपको याद है कुछ, हाँ वो सम्मूर्छन में उत्पन्न कराना है
अंतर्मूल,
तो पर्याप्त हो गया विश्राम किया और विशुद्ध होकर वो सम्यक तो प्राप्त,
वेदक
सम्यक तो प्राप्त किया ना,
28
तो वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, अंतर्मूर्त में चौथे में रहा और फिर पांचवा हो गया। अंतर्मूल तक चौथे में रखना क्योंकि चौथे का अंतर देखना है, पांचवे का अंतर देखना होता तो फिर पांचवा प्राप्त करा के चौथे मिला थे उसको या कुछ अलग से। देखो निकालो, हमने सम्यक दृष्टि की बात देखी थी ना, सम्यक तो मार्गणा के अनुसार उत्कृष्ट अंतर, पेज नंबर 155 333 सूत्र का जो है ना वो नीचे का पैराग्राफ देखो, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्या दृष्टि जीव पंचेंद्रिय संगी सम्मूर्छिन पर्याप्त तीर्यंचों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। और पुनः संयम संयमा संयम को गया, क्योंकि वो चौथे में एक अंतर्मूर्त तक रखकर फिर पांचवा बनाया, क्योंकि चौथे का अंतर देखना है। और फिर अंत में वो तो उसी भाव में रखकर मर गया तो देव हुआ, तो चौथे गुणस्थान में आ गया, ये उसका अंतर देखा था। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं, यहाँ अपन अपना पेज नंबर 162। संजदा संजदानम अंतरम केवचिरम कालादोहो दी नाना जीवम पड़ोच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। वेदक सम्यक दृष्टियों में संहिता संहितों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। अब एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतमुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। यानी पांचवे वाला चौथे में जाकर वापस लौटा तो उसका जघन्य अंतर हो गया। उपकस्य न छावट्ठी सागरोवमाणी देशुनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम छासर सागरोपम है। क्योंकि वेदक सम्यक्त्व में लगातार रहने का काल है 66 सागर, तो उसका अंतर किसका देख रहे थे हम, पांचवे का। यानी पहले भाव में एक बार उससे वो तो उपशम समय तो प्राप्त करके उसको पांचवे में लाओ, अंतर्मुत रखकर फिर वेदक बनाओ, और फिर लगातार वो पांचवा छोड़ कर रहा, चौथे में गया या कभी संयमी हुआ इस तरह से पढ़ेंगे उसको हमें। जैसे 163 पेज ना, एक मिथ्या दृष्टि जीव वेदक सम्यक्त्व और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, तो ये कौन सा मिथ्या दृष्टि होगा? साध ही होना चाहिए, 28 की सत्ता वाला होना चाहिए, तभी तो वेदक प्राप्त करेगा ना। अंतर्मुत रहकर पुनः संयम को प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः मरण कर जितने काल संयमा संयम और संयम के साथ रहा था उतने ही काल से कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। यानी वो 33 सागर में से इतना कम करके वहां उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहां पर जितने काल असंयम के अथवा संयम के साथ रहा है और स्वर्ग से मनुष्य गति में आकर जितने वर्ष पृथक्वादि काल असंयम अथवा संयम के साथ रहेगा, उन दोनों ही कालों से कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। दो बार 33 सागर वाला लिया और वो मनुष्य आयु उसमें से कम कर दी, पूरा 33 सागर नहीं लिया, 33 सागर माइनस ये जो कुछ पूर्व कोटि वगैरह हो, यानी वो तो बागजू के विमानों में उत्पन्न होते हुए, क्योंकि 32 सागर से तो ज्यादा है ना, उसमें से कुछ ही संख्या तो वर्ष ही कम कर दिए है। वहां से च्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वेदक सम्यक्त्व के काल में दो अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाने पर परिणामों के निमित्त से संयमा संयम को प्राप्त हुआ, तब अंतर लब्ध हुआ। यानी अंतर समाप्त होकर हमें टोटल अंतर मिल गया, फिर संयमा संयम में भी अंतर्मूर्त तो रहेगा ही। पुनः अंतर्मूर्त से दर्शन मुनि का क्षपण कर क्षायिक सम्यक् दृष्टि हो गया। देखो पूरा एक अंतर्मूर्त बाकी रहता है, या तो मिथ्यात्व में जाएगा या तो क्षायिक करके क्षायिक बनेगा। अब उसने क्या किया, उसके पहले वो पांचवे में आया, पांचवे में आने के बाद पेज नंबर 163 मिला हाँ, तो अभी उसको वेदक का काल पूरा किया, 266 सागर
क्षायिक हो गया,
अब वो क्षायिक हो जाएगा। पर कुछ कम क्यों किया, क्योंकि पांचवे में पांचवा छोड़ा तब से अंतर चालू होगा, पांचवे में आते ही अंतर समाप्त हुआ, तो वेदक समयत्व का काल उसका जो गिना तब, तो पहले बार उसको सहिमा सहिम को प्राप्त किया था वेदक के साथ, उसका अंतर्मुहूर्त वहां गिनना, और फिर लास्ट में दो अंतर्मुहूर्त बाद में गिनना। समझ में, तीन अंतर्मुहूर्त कम क्यों किए, पहली बार वेदक समयत्व के साथ पांचवे में आया, तो वेदक समय तो शुरू हुआ पांचवे में अंतर्मुहूर्त रहा, बाद में उसका पांचवे का अंतर चालू हो गया, वेदक समय तो अंतर्मुहूर्त तक चला ही था, तो वहां का एक अंतर्मुहूर्त गिना लास्ट में। फिर वो 66 सागर कैसा लिया, वो तो देव और मनुष्य के मिलकर 66 सागर लिए, और यहाँ जब क्षायिक करने जा रहा है, तो क्षायिक करने जा रहे तो लास्ट वाला अंतर्मुहूर्त उसका वो कृतकृत्य वेदक वगैरह वो गिनना है, और उसके पहले वाला पांचवे में आया था, उसके पहले तो पांचवे में आते ही उसका अंतर समाप्त हुआ, उसके बाद दो अंतर्मुहूर्त तक वो वेदक समय दृष्टि रहा, इसलिए वो दो और पहले वाला एक, तीन अंतर्मुहूर्त कम कर दिए। वेदक समय दृष्टि संहिता संहित का उत्कृष्ट अंतर है। तो ये बीच में जब पूर्व कोटिया बढ़ाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, हमने देखे ना कभी कभी तीन तीन चार चार पूर्व कोटिया बढ़ाई थी, कौन सा, हाँ माइनस करना, वो वेदक समय की कंडीशन है ना 66 सागर की, इसलिए लिया वहां पर हमने उसको बीच में वाले बहु में एक क्षायिक बनाया था, फिर भी 33 का पूरा बिता कर आया था, यानी 33 देखो कहाँ पर आई थी ये बात ना, बीच में वो पूर्व कोटिया भी गिनाई थी उन्होंने, पेज नंबर लिखा है क्या आपने कहीं, वन थर्टी नाइन चक्षुदर्शनी में बताया था ना, हाँ 266 पूर्व कोटि, नहीं मार्गणा चक्षुदर्शनी की थी, हाँ फिर भी देखो ना, देखो वहां निकालते जरा, नहीं नहीं वहां मैं मिथ्या तो मैं भी भेजा था उसको, चक्षुदर्शनी की मार्गणा थी, यहाँ तो वेदक समयत्व में ही रखना है उसको, हाँ चलो आना पेज नंबर 163 लास्ट सूत्र पढ़ेंगे वहां से, पमत्त अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदि नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, यानी छठे सातवें गुणस्थान में वेदक समय दृष्टि तो हमेशा ही होगी, वेदक समय दृष्टि प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। सूत्र एक जीवन पड़ुच्च जघन्येन अंतोमुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुख कैसे होगा छठे सातवें का, छठे वाला सातवें में जाकर वापस आएगा उसका,
सातवें वाला छठे में जाकर,
सातवें वाले को छठे में नहीं लाना, ऑप्शन श्रेणी चढ़ के
सेम हो जाएगा
नहीं होगा,
नहीं डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा,
उससे संख्या का गुणा काल है अकेले छठे का, सातवें का अंतर यानी क्या, आठ नौ दस ग्यारह दस नौ आठ
संख्या आठ
और आठ तक आए, सातवें में आता है तो अंतर समाप्त हुआ, इससे अकेले छठे का काल संख्यात गुना है। अब उत्कृष्ट अंतर की बात करेंगे, उक्कसे न तेतीसम सागरोवमानी सागिरे, यानी अब ये छठे सातवें वाले को छठे का अंतर करके उसको तेतीस सागर में भेज दो, छठे का अंतर करने के लिए सातवें में भेजकर उपशम श्रेणी चढ़ के उतार कर फिर सातवें में आया, छठे में आने के पहले मरकर दे हुआ, फिर तैतीस सागर में रहा, इस तरह से हम गिन सकते या तैतीस सागर माइनस एक समय गिनकर अंत में एक अंतर्मुहूर्त पहले वो संयम को धारण किया। अब यहाँ क्या कहते देखेंगे, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक तैतीस सागरोपम है, जैसे एक प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत हो अंतर्मुहूर्त रहकर एक समय कम तैतीस सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, एक समय कम किया ना वहां पर, क्योंकि उसको बहुत लेट उसको संयम धारण कराना है, संसार के अंतर्मुहूर्त प्रमाण अवशिष्ट रह जाने पर प्रमत्त संयत हुआ, यानी अप्रमत्त होकर प्रमत्त हुआ, जो प्रमत्त हुआ इतना बताना है, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पुनः क्षायिक सम्यक्त को प्रस्थापित कर क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हो क्षपक श्रेणी पर चढ़ा और अपूर्व कर्णादि छह अंतर्मूर्तों से निर्वाण को प्राप्त हुआ। ये हमारी मार्गणा है वेदक सम्यक्त की, इसलिए बाद में उसको क्षायिक बनाया, पहले अप्रमत्त से प्रमत्त में आया तो अंतर तो लब्ध हो गया और बाद में उसमें रहकर क्षायिक करके वो क्षपक श्रेणी जाए। अंतर के आदि के एक अंतर्मूर्त को अंतर के बाहरी आठ अंतर्मूर्तों में से कम कर देने पर अवशिष्ट सात अंतर्मूर्त रहते हैं, इनसे कम पूर्व कोटि से साधिक तैतीस सागरोपम काल प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। सॉरी, मैंने जो श्रेणी चढ़ के उतारा बताई बात वो नहीं होगी, सातवें से ही भेजना पड़ेगा, मैंने गलत कहा, क्यों गलत हुआ, वो तो लास्ट में पहले हमने जो कहा था सामान्य से समय विषय में
नहीं, उत्कृष्ट में ये नव अंतर्मूर्त क्यों नहीं लिया,
क्यों नहीं लिया, हाँ बोलो आप, मैंने गलत बोला, मैं स्वयं बता रही हूँ, तो गलती क्यों,
क्यों
हुई,
हाँ
कोई नहीं बता सकता, हाँ तो ऊपर शायिक नहीं, शायिक होगा या द्वितीय उपशम होगा,
अच्छा वो जल्दी संयम प्राप्त करने का वो अपेक्षा से,
हमारी मार्गणा वेदक सम्यक्त की है, श्रेणी चढ़ेगा तो द्वितीयोपशम करना पड़ेगा या क्षायिक करना पड़ेगा, क्षायिक होगा तो वो एक अंतर मुहूर्त में खलासी होगा, उसका अंतर ही घटित नहीं होगा,
वेदक सम्यक्त,
वेदक सम्यक्त के साथ रखना है, इसमें वो भी नहीं होगा,
वो छठे का,
वो छठे में ही जाके लाना पड़ेगा, सातवें के लिए भी वही होगा, सातवें से छठे लघु अंतर्मूर्त जाके लौटा, श्रेणी नहीं लेना। वेदक सम्यक तो सातवें तक ही है ना, तो पहले वाला जो प्रमत्त से अप्रमत्त होकर अंतर्मूर्त रहकर देव में गया था ऐसा ही लेना, और लास्ट में फिर उसको क्षायिक बनाया, तो क्षायिक बनाने के लिए वेदक में और लंबा काल तक रहता है। अगर क्षायिक नहीं बनता ना कोई जीव, तो एक अंतर्मूल पहले ही नीचे आ जाता है, नीचे नहीं हो मिथ्या तो नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए पूरा क्षायिक करने के लिए एक अंतर्मूल और बड़ा है, कृत कृत्य वेदक होकर क्षायिक हो जाता है। आगे अभी वेदक समय दृष्टि अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं। एक अप्रमत्त संयत जीव प्रमत्त संयत हो अंतर्मूर्त रहकर, अंतर्मूर्त इसलिए रखा कि वो अंतर में आ गए ना, अभी सातवां छोड़ा तो अंतर चालू हो गया, फिर भी उसको छठे में अंतर्मूर्त तक रखा। एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। ये हम पहले बार पूछते थे ना कि श्रेणी में मरने वाला जाता है क्या, वो तो नीचे मरने वाले भी जाते हैं,
छठे सातवें वाले भी जाएंगे ना, छठे और सातवें में मरण होगा तो भी जाएगा ना,
तो भी जाएंगे, क्योंकि पहले ऊपर वाला भी वेदक समय दृष्टि लिया था ना बिना उत्पन्न कराते, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। इसलिए लेते हैं कि उसके संयम जल्दी प्राप्त होगा तो अंतर छोटा मिलेगा,
अंतर
एक अंतर्मूर्त मोक्ष जाने के एक अंतर्मूर्त पहले उसको संयम में आ लाते हैं,
लंबा काल करते हैं।
जैसे कल अरविंद भाई ने पूछा था ना, तो आदिनाथ भी वो सर्वा सिद्धि से आए थे, पूरी 33 सागर वाली आयु से थे, तो 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व तो संसार में रहे, तो 1 लाख पूर्व ही उन्होंने संयम धारण किया। पर ये तो ऐसे है कि एक अंतर्मूल पहले धारण कर सकते कोई, इसलिए 33 सागर माइनस 1 समय लिया। इसलिए 33 सागर वालों के लिए यथायुग समय में संयम धारण करेंगे, ख्याल में आती है बस। एक समय का भी डिफरेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको अंतर बढ़ाना है। वो पांचवे के लिए ऐसा नहीं कहा था, पांचवा वो संयम वगैरह भी धारण करेगा फिर, वो तो उसमें भी ऐसा लिया था ना, पांचवे के अंतर के लिए अभी हमने पढ़ा था
एक
ना?
समय कम वाला ही लिया था, शायद समय के वस्तु में।
तेतीस सागर वाला लिया था, संयमा पर वो उसमें से माइनस की
तो कम हो जाएगा अंतर।
अच्छा, उतने आयु से ही कम लिया था वो,
तो उतना अंतर कम हो जाएगा,
वो बात वहां अलग थी। अब यहां हम आते अपना जो विषय चल रहा था, एक समय कम पड़ा ना, फिर से पढ़ते देखो 355 का अर्थ, पेज नंबर 164। एक प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत हो अंतर्मूत रहकर एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। संसार के अंतर्मूत प्रमाण अवशिष्ट रह जाने पर प्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पुनः क्षायिक संयुक्त को प्रस्थापित कर क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हो क्षपक श्रेणी पर चढ़ा। 164 पेज
165
अरे मेरा पेज पलट गया, मैं प्रमत्त की बात मैंने दोबारा पढ़ी, अप्रमत्त को पढ़ना था, मैंने प्रमत्त में करी चली में, तो अप्रमत्त वाला प्रमत्त हो गया तो
अंतर चाल
हो गया, उसमें अंतर्मुत रहा, एक समय कम 33 सागर की आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ, वहां से पूर्व कोटि की आयु में उत्पन्न हुआ, आयु के अंतर्मुत अवशिष्ट रहने जाने पर अप्रमत्त संयत हुआ। अभी आते हैं 165 पेज पर। इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया, यानी उसमें सातवें में अंतर्मुत रहेगा, तत्पश्चात प्रमत्त या अप्रमत्त संयत गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त को प्रस्थापित कर क्षपक श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत्त संयत होकर क्षपक श्रेणी पर चढ़ा और अपूर्व कर्णादि छह अंतर्मूर्तों से निर्वाण को प्राप्त हुआ। अंतर के आदि का एक अंतर्मूर्त बाहरी नौ अंतर्मूर्तों से घटा देने पर अवशिष्ट आठ अंतर्मूर्त रहे, इनसे कम, क्योंकि वैदिक समय तो उनके काल गिन रहे ना, पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोपम काल वैदिक समय दृष्टि अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब 356 वसम संवाद इच्छिसु। अभी औषमिक सम्यक तो हमारी मार्गणा कौन सी है, औषमिक सम्यक, तो वसम समाधिच्छिसु असंजत समाधिच्छिनम अंतरम केवचिरम कालाद हो दी नाना जीवम पड़ुच्च जहने ने एक समय। देखो अभी यहाँ क्या कह रहे, चौथे गुणस्थान का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, औषमिक सम्यक के साथ चौथे की बात चल रही, क्योंकि औषमिक समय को ये सेल्फ शांतर मार्गना, हमेशा ही कोई जीव उपशम समय के काल में होगा ये बात हो नहीं सकती, क्योंकि उसका अंतर्मूर्त समाप्त होता है तो वेदक हो जाता है या तो नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है। उपशम समय दृष्टियों में असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि निरंतर उपशम सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों का अभाव है। उक्कसेन सत्तार आदिन्द्रियाणि उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर, यानी औषमिक सम्यक्त के साथ नाना जीवों की अपेक्षा, उसका अर्थ है कितने मैक्सिमम कितने अंतर के बाद कोई ना कोई जीव उपशम सम्यक्त के साथ चौथे में आएगा ही आएगा, तो कहते कि सात दिन रात, रात दिन यानी अहोरात्र है, यानी हमारे सात दिन कहने से पूरे सात दिन रात गुनते ना, तो उतने काल में कोई ना कोई चौथे में आएगा औषमिक सम्यक्त के साथ। शंका, सात रात दिनों के अंतर का नियम किस लिए है, ये स्वभाव से ही है, कोई एक समय के अंतर से आ सकता है, कोई एक दिन के अंतर से आ सकते हैं, अन्य कोई ना कोई जीव, अधिक से अधिक कोई नहीं आएगा तो सात दिन में तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। देखो इसमें ये बात समझना, प्रथमोपशम काल में जो कोई चौथे में आया है वो प्रथमोपशम के ही काल में पांचवे में जाकर लौटेगा नहीं, द्वितीयोपशम वाला जा सकता है। देखो एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमोत्तम, जैसे एक संयत उपशम श्रेणी से उतर कर, यानी द्वितीयोपशम किया ना था उसने, उपशम श्रेणी में उसने चारित्र मोह की क्षपना उपशमना की थी, परंतु उसके लिए औषमिक सम्यक्त्व की मार्गणा चल रही है तो ये द्वितीयोपशम होगा। असंयत सम्यक् दृष्टि हुआ और अंतर्मूर्त रहकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त से पुनः असंयत हो गया, या मरकर देव में गया तो असंयत हो जाता है द्वितीय उपशम के साथ, इस प्रकार जघन्य अंतर लब्ध हुआ।
ये पांचवे का काल लिया, पांचवे का काल लिया,
हाँ पांचवे का काल गिनना पड़ेगा उसमें, उन पांचवे में लाकर दो चार समय में नहीं मरेगा, पांचवे का काल अंतर्मुख मिनिमम रहेगा ही रहेगा, बाद में मरेगा या चौथे में आएगा, बात एक ही है। उक्कस है ना अंतमोत्तम, उक्त जीवों का वो जी बराबर करना, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक संयत उपशम श्रेणी से उतर कर असंयत समय दृष्टि हुआ, वहां अंतर्मूर्त रहकर सेमासेम को प्राप्त हुआ, पश्चात अप्रमत्त और प्रमत्त संयत होकर असंयत समय दृष्टि हो गया, इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर लब्ध हुआ। यानी वो द्वितीयोक्षम का कितना बड़ा काल होगा कि उसके काल में वो पूरी श्रेणी चढ़ के नीचे आया है, और उसमें छठे सातवें से फिर वो छठे से चौथे में भी आ गया, फिर चौथे में अंतर्मूर्त रहकर फिर भी पांचवें में भी गया, छठे सातवें में भी गया, इस तरह। और फिर भी चौथे में आया तो भी उसका द्वितीय ऑप्शन ही चल रहा है। प्रथम ऑप्शन सम्यक तो की अपेक्षा हम बात करते हैं, परंतु उसका प्रथम ऑप्शन सम्यक तो चालू नहीं रहता ना, वो अंतर्मूर्त ही रहता है। ओघ में जो हमने देखा था, कोई जीव प्रथम ऑप्शन सम्यक तो के साथ चौथे में गया, दोबारा प्रथम ऑप्शन प्राप्त करने के लिए उसको कितना अंतर लगेगा, पल्ले का संख्या होगा, उसको यहाँ नहीं लेना, क्योंकि हम मार्गणा का अंतर नहीं देख रहे, उस मार्गणा में रहते हुए चौथे गुणस्थान का अंतर देख रहे। ख्याल में आई ना बातें? नहीं तो वो उपशम समय तो प्राप्त करता है तो हम कहेंगे पल्ले के असंख्या भाग बाद प्राप्त करता है, उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। समझ में? मार्गणा को कायम रखते हुए गुणस्थान का अंतर, उसका औक्षमिक समय दृष्टि बनाए रखना है, फिर चौथा प्राप्त भी कराना है, चौथे से अन्यत्र जाएगा और फिर चौथे में आएगा, तो ये द्वितीय औक्षम में ही संभव है, प्रथम औक्षम में नहीं। मैंने ये बताया हमारी मार्गणा औक्षमिक सम्यक्त्व की, औक्षमिक सम्यक्त्व चालू रखना है और चौथे में से अन्य गुणस्थान में जाकर वापस चौथे में लाना है। ये बात कहाँ होगी? तो द्वितीय ऑप्शन में होगी, प्रथम ऑप्शन में नहीं होगी। प्रथम ऑप्शन किसी गुणस्थान में लगातार वो उतना अंतर्मुख काल तक रहेगा, क्योंकि यहाँ लिया ना, इसलिए पहले उपशम श्रेणी से उतरने वाला जीव कंडीशन डाली उन्होंने, दोनों जगह ऐसा ही लिखा, उत्कृष्ट अंतर के लिए भी और जघन्य अंतर के लिए भी। उपशम श्रेणी से उतरा हुआ है वो द्वितीय उपशम वाला लिया जी, अब आगे बढ़ते हैं। संजदा संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने न एक समयम। उपशम समय दृष्टि संयता संयतों का अंतर कितने काल तक होता है? देखो, नाना जीव या एक जीव पहले सोचना है, यानी कोई जीव उपशम समय दृष्टि कोई था पांचवे में, अन्य गुणस्थान में चला गया, एक समय के लिए उपशम समय दृष्टि कोई नहीं था, एक समय के बाद कोई ना कोई हो गया, ये तो जघन्य अंतर एक समय है। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है। ऊपर का पड़ा था ना, नाना जी हम पड़े से जहने नहीं उस समय। यह सूत्र सुगम है। उक्त से न 14 आदिन दियाने, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंदर 14 रात दिन है, यानी जैसे 7 के बाद कोई ना कोई तो चौथे में जाएगा उपशम सम्यक के साथ, तो ये तो अधिक से अधिक 14 रात में तो कोई ना कोई जाएगा ही पांचवे में। नाना जीवों की अपेक्षा बात नहीं, यानी उपशम सम्यक्त्व के साथ चौथे का 7 रात, पांचवे का 14 रात, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात है। यह सूत्र भी सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमूर्तम। हाँ, 362 सूत्र, पेज नंबर 166, लास्ट। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, वो पढ़ा हमने। जैसे एक संयत उपशम श्रेणी से उतर कर, ये बार बार ये कंडीशन डाल रहे, तो द्वितीय उपशम की ही बात कर रहे हैं। संयमा संयम को प्राप्त हुआ और अंतर्मूर्त रहकर असंयत समय दृष्टि हो गया। संयता संयतों का अंतर देख रहे हैं ना, यानी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेगा तो सातवां, फिर छठा, छठा सातवां जाएगा, फिर छठे से पांचवें में, और पांचवें का अंतर कब होगा, जब पांचवें में रहकर नीचे उतरेगा तब। अंतर्मूर्त रहकर असंयत समय दृष्टि हो गया, फिर भी अंतर्मूर्त से संयमा संयम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्य अंतर लब्ध हुआ। जघन्य के लिए उसको चौथे में जाकर वापस लाया। उक्त से न अंतोमूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक संयत उपशम श्रेणी से उतरकर संयता संयत हुआ, अंतर्मूर्त रहकर अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, यानी पहले फिर ऊपर चढ़ा, यानी सातवें में जाकर फिर छठा सातवां किया, बहुत बार अंतर्मूर्त रह गया, और असंयत समय दृष्टि होकर यानी चौथे में गया फिर, और फिर संयता संयत हो गया। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर लब्ध हुआ, यानी क्रम से पांचवे में आया था, फिर उसको संयमी बनाया, और फिर चौथे में गया, और फिर बाद में पांचवे में आया। हाँ, इतना बड़ा द्वितीय उपशम का काल है। सातवें में जाते हैं तो हजारों बार छठा सातवा होता ही है। हाँ, इसलिए इन्होंने सब मिलकर अंतर्मूर्त गिना है ना, छठे का, सातवें का वगैरह। हाँ, 167 पेज चल रहा है। पमत्त अपमत्त संजदानम केवचिरम कालादो, अंतरम केवचिरम कालादो होदी। पहले नाना जीवन की अपेक्षा बात करेंगे। नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम, उपशम समय दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है। नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है। यह सूत्र सुगम है। देखो, उपशम सम्यक की कंडीशन है, इसलिए अंतर पड़ रहा है। छठे सातवें में तो हमेशा मुनिराज होते हैं, पर वो वेदक तो हमेशा हो गए, शायिक भी हमेशा पाए जाएंगे। ये बात किसकी चल रही, उपशम सम्यक की बात चल रही। उपशम समय दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है। नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है। यह सूत्र सुगम है। उक्त से न पन्नारस रादिंदियाने, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर 15 रात दिन है। यानी 15 दिन में कोई ना कोई औपशमिक सम्यक्त्व के साथ मुनिपना धारण करेगी। औपशमिक सम्यक्त्व के साथ मुनिपना का अर्थ क्या होता है?
द्रव्य लिंगी।
अरे, मिथ्या तो में से जाएंगे ना, वो
द्रव्य लिंगी मिथ्या तो।
यह सूत्र सुगम है। यानी चौथे के लिए 7 दिन रात का उत्कृष्ट अंतर देखा था, पांचवे के लिए 14, और छठे सातवें के लिए 15 दिन रात। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक संयत उपशम श्रेणी से उतर कर प्रमत्त संयत हो, अंतर्मूर्त रहकर अप्रमत्त संयत हुआ, फिर भी प्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर्लब्ध हुआ। इसी प्रकार से उपशम समय दृष्टि अप्रमत्त संयत का भी जघन्य अंतर कहना चाहिए, वो भी छठे में जाकर फिर सातवें में आ गया, यही उसका होगा। उपकस्यन अंतोमोत्तम, उपशम समय दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक संयत उपशम श्रेणी से उतर कर एक द्वितीय उपशम की कंडीशन हर जगह लगा रहे, प्रमत्त संयत होकर पुनः संयता संयत असंयत और अप्रमत्त संयत होकर प्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। उपशम समय दृष्टि अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक संयत उपशम श्रेणी से उतर कर अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः प्रमत्त संयत असंयत और संयता संयत होकर फिर भी अप्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर लब्ध हुआ। ये सभी बातें द्वितीयोपशम पर ही घटित हुई है, जो ऑलरेडी उतरा है श्रेणी उसकी बात लेना। तिन्नम उपसामगानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पडुच्च जहन्नेन एक समयम। उपशम समय दृष्टि अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय इन तीनों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। ये तो बहुत बार आया ना, यानी द्वितीय उपशम के साथ श्रेणी चढ़ने वाले नाना जीवों का जघन्य अंतर एक समय होगा। उपकस्यन वासपुधत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, ये दोनों ही सूत्र सुगम है। यानी इतने जीव तो उस श्रेणी चढ़ेगी चढ़ेगी इतने काल में, नाना जीवों की बात है, काल नहीं चल रहे, अंतर चल रहे, अंतर चल रहे, कोई ना कोई जीव उसमें आएगा उसकी बात। एक जीव की अपेक्षा कैसे लेना, एक बार चढ़ के उतरा तो उसका अंतर होगा, उपशामक चढ़ रहा था और चढ़ते हुए फिर उतरते हुआ प्राप्त हुआ तो उसका अंतर हुआ। एक जीवम पड़ुच्च जहने न अंतमोत्तम 169 पेज। उक्त तीनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। तीन ही उपशामक लिए, ग्यारहवें गुणस्थान का अंतर कितना होगा एक जीव की अपेक्षा
अंतर्मूर्त, अंतर्भूत हो जाएगा ना, पीछे आएगा हाँ। और वापस श्रेणी करेगा तो अंतर्भूत हो जाएगा।
कौन से समयत्व के साथ,
उपशम समय,
एक बार द्वितीय उपशम करने के बाद दो बार श्रेणी चढ़ी नहीं जाएगी।
नहीं 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 करो, नहीं करो, नहीं होगा।
साइक वाले के संभव था, साइक समयत्व के साथ संभव था,
वेदक हो जाएगा।
समझ में आई बात, द्वितीय उपशम किया है एक बार श्रेणी चढ़ के उतरा है
वेदक
तो नीचे आने पर फिर वेदक हो ही जाएगा नियम से,
और पीछे
दोबारा द्वितीय उपशम करना पड़ेगा तब दोबारा श्रेणी चढ़ सकता है। एक ही बार के द्वितीय उपशम में दो बार श्रेणी नहीं चढ़ सकते उसको। हाँ, हमने छठे सातवें में लाकर चौथे पांचवें में घूमकर छठे सातवें हो सकता है, उतना हो सकता है, बाद में तो वो वेदक से यानी वेदक होगा ही होगा। देखो यहाँ हमने जो हमने तो अभी पढ़ना बाकी है, वो पहले हमने आपको पूछ लिया, तीन उपशामक को ही लिया, ग्यारहवें को नहीं लिया। तो तीनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे उपशम श्रेणी पर चढ़कर आदि करके, आदि यानी वो अंतर शुरू किया, फिर भी ऊपर जाकर और उतर कर विवक्षित गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव में अंतर्मूर्त प्रमाण जघन्य अंतर होता है। ये तो जो हमने देखा था हमेशा वही। उपकस्यन अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यह उत्कृष्ट अंतर की प्ररूपणा भी जघन्य अंतर की प्ररूपणा के समान ही जाननी चाहिए, किंतु विशेषता यह है कि ओहो उपशम श्रेणी पर द्वितीय बार चढ़ने वाले जीव के जघन्य अंतर होता है और प्रथम बार चढ़कर उतरे हुए जीव के उत्कृष्ट अंतर होता है। सके ये कल बात आई थी ना अपने, क्या वो गुणस्थानों का काल अलग अलग हो सकता है किसी का, उसका उत्तर यहाँ आया। यानी पहली बार चढ़ने वाले को ज्यादा समय लगेगा उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने के लिए, और जो एकदम फिर अंतर्मुहूर्त में चढ़कर उतरने वाले के लिए, हाँ यहाँ कल बात आई थी उपशम श्रेणी का लघु काल और दीर्घ काल, ये बात आई थी 152 पेज पर आई थी वो बात। वो तो बहुत सबका ना
अनिवृत्तिकरण का भी
तीनों उपशामक के लिए बता रहे ना,
क्योंकि अनिवृत्तिकरण में हमने अच्छा वहाँ पे कुछ
करे वो दूसरे सबका समान है, पर अनिवृत्ति का क्या है, दूसरे बार चढ़ने वाले के सबका समान होगा। आप जैसे अनिवृत्ति के नाम उपशामक का भी एक शपक का भी, उसके काल में अंतर है ना 152 बता ना मैंने आप उपशम श्रेणी का दीर्घ काल और लघु काल बार नीचे का पैराग्राफ, हाँ वहाँ रेफरेंस थे ना आप। अब 169 पर 152 यानी प्रथम बार चढ़ने वाले को समय ज्यादा लगता है। ये पढ़ा होता है मगर कितनी बार आउट ऑफ
नहीं ख्याल में आता,
यानी उसका हमने इतना चर्चा नहीं की थी ना उसके।
तो क्या प्रथम उपशम में भी एक बार जिसे प्रथम उपशम प्राप्त कर लिया है वो पहले का संख्या के बाद प्रमाण जाने
वो तो इतना समय जाता है, ये इमीडिएट करने वाला या अंतर्मुहूर्त में दूसरे बार चढ़ने वाला जीव लिया है। ऐसा भी होता है ना उसका, देखो यानी वो आप उसको आठवें गुणस्थान में घटित करो कैसा भी करो, परंतु जब द्वितीय बार चढ़ रहा है तो उसने वैसे तो कांडघात भी बहुत सारे किए हैं, तो कितनी क्षपणा भी हो, यानी कितनी तो निर्जरा भी हो गई उसकी, क्षपणा नहीं कहेंगे निर्जरा भी बहुत सारी हुई है, तो दूसरी बार चढ़ने वाले को वैसे भी स्थिति कम है कर्मों की सत्ता वाली जो स्थिति है वैसे भी कम हो गई ना,
तो कांडघात भी कम हो जाएंगे दूसरी बार चढ़ेगा
छोटे हो गए, यानी जो कुछ यथा योग्य उसको कम समय लगेगा ये बात लगती है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपना अपना लब्धिचार का विषय नहीं है तो उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना 372 सूत्र उवसंत कषाय वीदराग छदुमत्थानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। उपशांत कषाय वीतराग छदमस्थ जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है। उक्कसेन वादपुदत्तम वासपुदत्तम उत्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पुदक, नाना जीवों की अपेक्षा जो उपशम श्रेणी का अंतर है वही उपशम सम्यक्त्व के साथ श्रेणी चढ़ने वालों का 11वें का, ये दोनों ही सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, ये हमने पूछा था ना ऊपर प्रश्न उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, उस पर शंकाकार पूछ रहा है 170 पेज। नीचे के गुणस्थानों में अंतर को प्राप्त कराकर सर्व जघन्य काल से पुनः उपशांत कषाय को प्राप्त हुए जीव के जघन्य अंतर क्यों नहीं कहते हैं, ये हमने देखा था ना अभी इस पर ही चर्चा हुई थी समाधान नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी से नीचे उतरे हुए जीव के वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुए बिना पहले वाले उपशम सम्यक्त्व के द्वारा, पहला वाला उपशम द्वितीय उपशम किया था पहली बार, उसी के द्वारा पुनः उपशम श्रेणी पर समारोहण करने की संभावना का अभाव है। फिर पूछते यह कैसे जाना, उसका समाधान, क्योंकि उपशम श्रेणी के समारोहण योग्य काल से शेष उपशम सम्यक्त्व का काल अल्प पाया जाता है। यानी उपशम श्रेणी चढ़ के उपशम श्रेणी में जितना काल बिताया है उसके बाद जो काल बचा है ना उसका शेष उपशम सम्यक्त्व का काल अल्प पाया जाता है। यानी चढ़ने के लिए ज्यादा समय लगता है उसको, यानी ग्यारहवें के बाद वाला जो काल है वो छोटा है, चढ़ने वाला जो आठ नौ दस ग्यारहवें तक का काल है वो बड़ा है। समारोहन करना है ना चढ़ना, यानी हाँ ये वाला साधिक होता है। समारोहण काल देखा, शेष काल छोटा है तो उसी में फिर दोबारा कैसे श्रेणी चढ़ेगी। ये फिर पढ़ती हूँ मैं, उपशम श्रेणी के समारोहण योग्य काल से शेष उपशम सम्यक्त्व का काल अल्प पाया जाता है तो फिर यह भी कैसे जाना जाता है। समाधान, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ के एक जीव के अंतर का अभाव अन्यथा बन नहीं सकता, मूल सूत्र से ही जाना जाता है। इससे जाना जाता है उपशम श्रेणी के समारोहण काल से शेष उपशम सम्यक्त्व का काल अल्प है। और वेदक हुए बिना फिर दोबारा उपशम द्वितीय उपशम नहीं होता, ये वो सारा अंतर्मुख में होता है फिर भी उतना काल तो जाएगा। हाँ अब यहाँ पढ़ते शासन सम्मा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठीनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी। ये उपशम सम्यक्त्व में सासाधन कहाँ से आया,
सम्यक्त्व मार्गणा है ना। अरे
हाँ हाँ सम्यक्त्व मार्गणा है, उसमें हमने सामान्य से सम्य दृष्टि देखे, शायिक सम्य दृष्टि देखे, वेदक सम्य दृष्टि देखे, औषमिक सम्य दृष्टि देखे। अब नीचे के तीन गुणस्थान देखने हैं ना, तो गुणस्थान कहो या सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा उनका कथन को बात एक ही होगी, परंतु वो मार्गणा कायम रखते हुए उसको क्या करना है, अंतर देखना। तो सासाधन में रहते हुए सासाधन का अंतर होगा एक जीव की अपेक्षा
नहीं,
अन्य जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर होगा,
पल्ले का अंतर
पल्ले का एक जीव की अपेक्षा कैसे अंतर होगा। हम सासाधन का अंतर देखते हैं एक बार होने के बाद मिथ्या तो में जाता है पल्ले के असंख्यात विभाग भर, अरे पर वो मिथ्या तो नहीं गया तो मार्गणा चेंज होगी, सम्यक तो मार्गणा चेंज हो जाएगी, ख्याल में आई बात। देखो सासाधन समय दृष्टि समय मिथ्या दृष्टि जीवों का ऊपर पढ़ा कि मैंने सासन सम्मादिष्टि सम्मा मिथ्या दृष्टि न अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ोच जहन्ने न एक समयम, ये हुआ सासाधन सम्य दृष्टि और सम्य मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। उपकसेना पलिदो उमस असंख्य जदि भागो, नाना जीवों की अपेक्षा तो सर्वत्र हमने यही देखा था, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्याता भाग है, दोनों गुणस्थानों के लिए दूसरे और तीसरे के लिए। यह सूत्र भी सुगम है। अब क्या कहते हैं, देखो, एक जीवम पड़ुच्च नस्ति अंतरम निरंतरम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि ये मार्गणा ही एक सिंगल गुणस्थान वाली है, तो वो मार्गणा को रहते हुए अन्य गुणस्थान में जाएगा तो मार्गणा ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में परिवर्तन असंभव है। मिच्छा दिच्छिन्नम अंतरम केव चिरम काला दहोदी, नाना एक जीवम पड़ुच्च नस्ति अंतरम निरंतरम। मिथ्या दृष्टि तो हमेशा ही पाए जाएंगे, एक जीव की अपेक्षा भी अंतर कैसा कहेंगे हम, मार्गणा हमारी मिथ्यात्व की है। ओग में तो हमने देखा था उसको समय में रखो दो छात्र सागर बीच में तीसरे में लाकर, वो हो सकता था, यहाँ वो बात नहीं संभव, कि मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं निरंतर है, क्योंकि नाना जीवों के प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता, मिथ्या तो गुणस्थान में हमेशा ही जीव पाए जाएंगे, तथा एक जीव का अन्य गुणस्थानों में संक्रमण भी नहीं होता, क्योंकि हमारी मार्गणा ही मिथ्या दृष्टि वाली है। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा समाप्त हुई, यही रुकेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देव।